नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। दिल्ली सरकार ने नरेला क्षेत्र को विश्व स्तरीय शिक्षा केंद्र बनाने का निर्णय लिया। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने आज खान मार्केट सौंदर्यकरण कार्य का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पीतमपुरा के सर्वोदय विद्यालय में 47वीं जूनियर बॉयज नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप का शुभारंभ किया और 53वां विश्व पुस्तक मेला आज से दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली सरकार ने नरेला एजुकेशन सिटी को विश्व स्तरीय शिक्षा केंद्र बनाने का निर्णय लिया है। आज एक प्रेस वार्ता में शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने बताया कि उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की उपस्थिति में दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी और गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय को नरेला एजुकेशन सिटी में 35 एकड़ से अधिक भूमि के अधिकार पत्र सौंपे गए। श्री सूद ने बताया कि नरेला में लगभग 160 एकड़ भूमि पर विश्व स्तरीय शिक्षा केंद्र विकसित करने की दिशा में दिल्ली सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है।
इस छोटे से कालखंड में हमारी सरकार ने इन यूनिवर्सिटीज को एक जगह ले जाकर एक ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ वर्ल्ड क्लास एजुकेशन और इनोवेशन हब तैयार करने की जो पहल शुरू की है कि हमारे बच्चे वर्ल्ड क्लास एजुकेशन प्राप्त करें, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज को लाने का, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज देने का दिल्ली की हायर एजुकेशन टेक्निकल एजुकेशन में जो काम किया है उसकी खुशी आप लोगों के माध्यम से दिल्ली की जनता से साझा करने के लिए मैंने आज आप लोगों को तकलीफ दी है।
दिल्ली सरकार ने राजधानी की परिवहन व्यवस्था को पूरी तरह ग्रीन बनाने के लिए केंद्र सरकार को 3000 से अधिक अतिरिक्त इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए आज एक प्रस्ताव भेजा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि राजधानी के परिवहन विभाग के अंतर्गत इन बसों में 7 मीटर, 9 मीटर और 12 मीटर वाली बसें शामिल हैं जो दिल्लीवासियों को संकरी सड़कों पर अंतिम मील कनेक्टिविटी प्रदान करेंगी। श्रीमती रेखा गुप्ता ने कहा कि ये बसें दिल्ली के ग्रीन ट्रांजिशन का आधार बनेंगी और शहर में प्रदूषण नियंत्रण के लिए निर्णायक साबित होंगी। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने बताया है कि सदन की विशेषाधिकार हनन को लेकर पंजाब के पुलिस महानिदेशक और जालंधर पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किया गया है। नई दिल्ली में आज श्री गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार ने विधानसभा की कार्यवाही के वीडियो फुटेज के आधार पर राज्य में प्राथमिकी दर्ज करने के मामले में पंजाब पुलिस से 48 घंटे के भीतर जवाब मांगा है। उन्होंने कहा कि सदन में गुरुओं का अपमान देश कभी स्वीकार नहीं करेगा। श्री गुप्ता ने कहा कि इस विषय में सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इस सदन की मर्यादा को अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए अगर इस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा, अगर अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए, अपने निजी स्वार्थों के लिए गुरुओं के सम्मान से भी अगर कोई खेलने की कोशिश करेगा तो ये सदन बर्दाश्त नहीं करेगा। ये केवल एक झूठा आरोप नहीं है बल्कि एक सुनियोजित साजिश कॉन्स्पिरेसी प्रतीत होती है जिसका उद्देश्य सदन की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाना और संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करना है। इस साजिश में जो भी लोग प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से शामिल पाए जाएंगे उनके विरुद्ध यह सदन कठोरतम कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटे।
नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने आज खान मार्केट के मिडिल लेन सुधार कार्य का शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री चहल ने कहा कि राजधानी के प्रमुख बाजारों का पुनर्विकास करना एनडीएमसी की प्राथमिकता है। नगर पालिका उपाध्यक्ष ने बताया कि ये परियोजना लगभग 1 करोड़ की लागत से 3 महीने में पूरी की जाएगी। उन्होंने कहा कि अब खान मार्केट प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकास मॉडल के रूप में जाना जाएगा। श्री चहल ने बताया कि इस परियोजना में ग्रेनाइट फ्लोरिंग, सिविल और इलेक्ट्रिकल सेवाओं के लिए एकीकृत डक्ट बनाए जा रहे हैं।
यहाँ हम सब लोगों ने मिलकर एनडीएमसी की टीम ने नाइट स्वीपिंग जो दिल्ली में शुरुआत हुई वो यहीं से हुई, खान मार्केट से। खान मार्केट एसोसिएशन के जो लोग हैं वो पूरा सहयोग करते हुए सब लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत की, विकसित दिल्ली और विकसित एनडीएमसी के लिए वचनबद्ध है। ट्रैफिक फ्री जोन कुछ बने उसके लिए भी हम प्लानिंग कर रहे हैं। तो खान मार्केट व्यापारियों के लिए, आने वाले जो यहाँ पर कंज्यूमर्स हैं उनके लिए, विदेशी सैलानियों के लिए, हर एक तरह के लोगों के लिए ये सबसे बेस्ट प्लेस है और प्लेस बने उसके लिए नरेंद्र मोदी डेवलपमेंट मॉडल के लिए खान मार्केट जाने जाए, हम सब लोग वचनबद्ध हैं।
53वां विश्व पुस्तक मेला आज से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हो गया है। ये मेला 18 जनवरी तक चलेगा। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये पुस्तक मेला भारत और विश्वभर के प्रकाशकों, लेखकों, पाठकों और संस्कृति के क्षेत्र से जुड़े लोगों को एक साथ लाने का मंच प्रदान कर रहा है।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज इस मेले का उद्घाटन किया। श्री प्रधान ने कहा कि यह मेला सिर्फ पुस्तकों की प्रदर्शनी नहीं दर्शाता बल्कि विचारों का जीवंत और लोकतांत्रिक संवाद है।
पिछले 53 वर्षों में लगातार आयोजित हो रहा यह दिल्ली की पुस्तक मेला आज विश्व प्रकाशन जगत का एक प्रतिष्ठित और विश्वसनीय मंच बन चुका है।
इस वर्ष के विश्व पुस्तक मेले में आगंतुकों को 35 से अधिक देशों के 1000 से ज्यादा प्रकाशक एक साथ देखने को मिल रहे हैं। इस वर्ष मेले में कतर अतिथि देश है और स्पेन फोकस देश के रूप में भाग ले रहा है। मेले का विशेष आकर्षण भारतीय सैन्य इतिहास, शौर्य और बुद्धिमता विषय पर आधारित प्रदर्शनी है। इसके तहत भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के स्वतंत्रता के बाद से राष्ट्र निर्माण में योगदान को समर्पित 500 से अधिक पुस्तकों को प्रदर्शित किया गया है। मुख्य आकर्षणों में अर्जुन टैंक, INS विक्रांत और LCA तेजस की प्रतिकृति, 21 परमवीर चक्र विजेताओं को श्रद्धांजलि और बुडगाम 1947 से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक के प्रमुख युद्ध और सैन्य अभियानों पर बैठकें शामिल हैं। इसके अलावा मेले का एक और आकर्षण राष्ट्रीय ई पुस्तकालय भी है। आगंतुकों के लिए मेले में प्रवेश निःशुल्क है। प्रादेशिक समाचार के लिए दृष्टि पुनियानी।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि देश के भविष्य को आकार देने में युवाओं की अहम भूमिका है। आज नई दिल्ली में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री मांडविया ने कहा कि ये संवाद युवा नेतृत्व को प्रौद्योगिकी, उद्यमिता, शासन, सतत और सामाजिक विकास जैसे क्षेत्रों के समाधान के लिए प्रोत्साहित करेगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये डायलॉग 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए युवाओं की प्रतिभा और रचनात्मकता को पहचानने की एक प्रक्रिया है।
आज बहुत अच्छी बात कही डोवाल जी ने कहा कि स्वर्ग जाना है तो मरना पड़ता है, हमें कुछ साध्य करना है तो उसके साथ जीना पड़ता है। तो हम देश को जिए, देश के प्रति तब कमिटमेंट आएगा, ऐसे युवा तैयार करने का हमारा लक्ष्य है।
इस अवसर पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने युवाओं से भविष्य में विकसित भारत का नेतृत्व करने के लिए निर्णय लेने की क्षमता विकसित करने का आह्वान किया।
युवा को अपने रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे निर्णय और बड़े निर्णय करना, और जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे छोटी सी बात से और बड़े बड़े निर्णय आप लोगों को ही लेने। भारत तो विकसित होगा ही, भारत जिस गति और जिस रफ्तार पर प्रधानमंत्री मोदी जी इसको ले आए हैं, ये एक ऑटो मोड में भी चलेगा और विकसित हो जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को नई दिल्ली में स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के समापन सत्र में भाग लेंगे। श्री मोदी ने कहा है कि देश के युवा एक मजबूत और समृद्ध राष्ट्र के निर्माण की प्रेरक शक्ति हैं। सोशल मीडिया पोस्ट पर प्रधानमंत्री ने विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में देश के युवाओं से जुड़ने की उत्सुकता व्यक्त करते हुए कहा कि देश की युवा शक्ति असाधारण उत्साह और अद्वितीय जोश से प्रेरित होकर राष्ट्र के विकास और प्रगति के लिए प्रतिबद्ध है। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा है कि विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन बन गया है। ये युवाओं को शासन और नीतिगत चर्चाओं से जोड़ता है। श्री मल्होत्रा ने नई दिल्ली में आयोजित यंग लीडर्स डायलॉग को संबोधित करते हुए ये बात कही। परीक्षा पे चर्चा 2026 के लिए 4 करोड़ से अधिक ऑनलाइन प्रतिभागियों ने पंजीकरण कराया है। ये संख्या पिछले वर्ष के 3,50,00,000 से अधिक के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को भी पार कर गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि परीक्षा पे चर्चा एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन बन गया है, जिसका उद्देश्य युवाओं के लिए तनाव मुक्त वातावरण बनाना है। बजट पूर्व बैठकों के क्रम में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज राजधानी दिल्ली में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों के साथ बैठक की। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहे। संसद का बजट सत्र इस महीने की 28 तारीख से शुरू हो रहा है। पश्चिमी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार ने राष्ट्र की रक्षा में अटूट प्रतिबद्धता और वीरता दिखाने वाले सैनिकों तथा इकाइयों को आज वीरता पुरस्कार प्रदान किए। नई दिल्ली में पश्चिमी कमान के अलंकरण समारोह को संबोधित करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल कटियार ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सहित हाल की परिचालन उपलब्धियों ने पश्चिमी कमान की तत्परता और पेशेवर उत्कृष्टता को प्रदर्शित किया है। लेफ्टिनेंट जनरल कटियार ने विजेताओं को बधाई देते हुए कहा कि उनका साहस और समर्पण सेना के लिए प्रेरणा का स्रोत है। लेफ्टिनेंट जनरल कटियार ने कहा कि विविधता में एकता सेना की शक्ति बनी हुई है।
हमारी सेना में देश के कोने कोने से आए लोग हैं, हर धर्म हर जाति के सैनिक हैं। हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता की एक मिसाल है। हमें अपनी इस विशेषता को कायम रखना है। कैंट में हमारे सर्वधर्म स्थल, जहां मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च एक ही प्रांगण में होते हैं, हमको ये सीख देते हैं ईश्वर अल्लाह तेरा नाम। हमें अपने इस सेक्युलर करेक्टर को कायम रखना है। ये वो अहम विशेषता है जो हमको मजबूत बनाती है, दूसरों से बेहतर बनाती है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। रोहिणी सेक्टर 29 में आज अटल स्मृति सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भाग लिया। कार्यक्रम में उत्तर पश्चिम जिले के लगभग 3000 से अधिक कार्यकर्ता शामिल हुए, जिसमें से 1600 वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा अपने कार्यकर्ताओं के अमूल्य योगदान के प्रति सदैव ऋणी है और उनके मान सम्मान के लिए है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज पीतमपुरा स्थित सर्वोदय विद्यालय में 47वीं जूनियर बॉयज नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्रीमती रेखा गुप्ता ने विजेता टीम के लिए 1,00,000 रूपये के पुरस्कार की घोषणा की। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए खिलाड़ियों के भत्ते बढ़ाए हैं और स्कूल स्तर से ही सहायता राशि दी जा रही है। आज विश्व हिंदी दिवस है। इस दिवस की शुरुआत विदेशों में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए हुई थी। इसका उद्देश्य कूटनीति, शिक्षा और सांस्कृतिक आदान प्रदान सहित अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हिंदी के उपयोग को प्रोत्साहित करना है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लोगों को शुभकामनाएं दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती रेखा गुप्ता ने कहा कि हिंदी देश की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम होने के साथ साथ हमारे चिंतन की गहराई तथा वैश्विक पटल पर भारत के बढ़ते गौरव की प्रतिध्वनि है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि हिंदी को जन जन की वाणी बनाने और इसे वैश्विक शोध तथा संवाद की मुख्यधारा में प्रतिष्ठित करने का संकल्प लें। सरकार ने अखबार द इकोनॉमिक टाइम्स में प्रकाशित उस लेख का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया था कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के भीतर समस्याओं के कारण खाद्य व्यवसाय के लाइसेंस और नियामक अनुमोदन रोक दिए गए हैं। राजधानी दिल्ली में आज दिन भर धूप खिली रहने से लोगों को भीषण ठंड से राहत मिली। दिल्ली में आज का अधिकतम तापमान 20.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार कल शीतलहर चलने का अनुमान है और कुछ जगहों पर धुंध छाए रहने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली सरकार ने नरेला क्षेत्र को विश्व स्तरीय शिक्षा केंद्र बनाने का निर्णय लिया। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने आज खान मार्केट सौंदर्यकरण कार्य का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पीतमपुरा के सर्वोदय विद्यालय में 47वीं जूनियर बॉयज नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप का शुभारंभ किया और 53वां विश्व पुस्तक मेला आज से दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।